ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जेनजी आंदोलन के शहीदों का पशुपति आर्यघाट में राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कल मनाया जाएगा राष्ट्रीय शोक। सड़क की स्थिति देखकर ही दशहरे के लिए अग्रिम टिकट बुकिंग खोलने की यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ की मांग। भरोसेमंद सुरक्षा व्यवस्था करने की प्रहरी की प्रतिबद्धता। जहरीली शराब पीने से 12 के गछिया में 3 लोगों की हुई मौत और गजा क्षेत्र में इजराइल की जमीनी कार्रवाई में कम से कम 68 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। इसी भाद्र 23 और 24 गते के जेनजी आंदोलन में शहीद हुए लोगों के पार्थिव शरीरों का आज राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पशुपति आर्यघाट पर आज गृह तथा कानून मंत्री ओम प्रकाश अर्याल और ऊर्जा तथा शहरी विकास मंत्री कुलमान घिसिंग ने राष्ट्रीय झंडा उड़ाकर शहीदों का सम्मान किया था। दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों समेत भारी संख्या में शरीक हुए लोगों ने शव यात्रा निकालकर उन्हें आर्यघाट पहुंचाया था। आर्यघाट पर सुरक्षा निकाय ने उन्हें सलामी देकर सम्मानित किया था। बता दें कि सरकार ने जेनजी आंदोलन में जान गंवाने वालों को शहीद घोषित करने, राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने और राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने के लिए आश्विन 1 गते यानी कल सार्वजनिक छुट्टी देने लगायत निर्णय किए थे। जेनजी प्रदर्शन के दौरान शहादत प्राप्त 6 शहीदों के शव अंतिम संस्कार के लिए नेपाली सेना के हवाई साधन द्वारा संबंधित जिलों में पहुंचाए गए हैं। भाद्र महीने की 23 और 24 गति को हुए प्रदर्शन के दौरान शहादत प्राप्त शहीदों के शव परिवार के सदस्यों के साथ सुनसरी, उदयपुर, सिरहा, धनकुटा और संखुआ सभा जिलों में पहुंचाए गए हैं। ये जानकारी सैनिक जनसंपर्क तथा सूचना निर्देशनालय ने दी। प्रदर्शन के दौरान अब तक 72 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने शिष्टाचार भेंट की। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आज हुई भेंट के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय हित और आपसी रुचि के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ये जानकारी प्रधानमंत्री के सचिवालय ने दी। भेंट के दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने वर्तमान सरकार का प्रमुख कार्यक्षेत्र चुनाव कराना बताते हुए इसमें सहयोग के लिए अनुरोध किया। इसी भेंट में राजदूत श्रीवास्तव ने अच्छे पड़ोसी के संबंध के नाते नेपाल की आवश्यकता के अनुसार भारत का सहयोग जारी रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर राजदूत श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री कार्की को नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बधाई संदेश भी सौंपा। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के संदेश में नेपाल भारत के बीच की मित्रता और सहयोग के संबंध को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने ट्रैफिक पुलिस को उच्च मनोबल के साथ काम करने का निर्देश किया है। आज काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय का निरीक्षण करते हुए गृहमंत्री अर्याल ने ऐसा निर्देश किया। मौके पर उन्होंने ट्रैफिक प्रहरी के भवन निर्माण आदि में भरपूर सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई थी। ज्ञात हो कि भाद्र 23 और 24 गते को हुए जेनजी आंदोलन के दौरान कुछ आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों के घुसपैठ के कारण काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय, ट्रैफिक पोशाक और विभिन्न साधन जलकर नष्ट हो गए। पूर्व सांसद मंच नेपाल ने सभी राजनीतिक दलों से जन आकांक्षाओं के अनुसार स्वयं को सुधारते हुए चुनाव में भाग लेकर देश को प्रगति की ओर ले जाने का आह्वान किया है। मंच ने जेनजी समूह के प्रदर्शन के दौरान हुई जनधन की भारी क्षति पर दुख व्यक्त करते हुए सभी दलों से चुनाव में भाग लेकर देश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। मंच के अध्यक्ष ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोकतंत्र का उच्चतम अभ्यास चुनाव ही है, इसलिए ये जनता के पास जाने और स्वयं को जन परीक्षा में उत्तीर्ण कराने का सर्वोत्तम अवसर है। प्रतिनिधि सभा विघटन होने और आगामी फाल्गुन 21 गते के लिए चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक तैयारियों का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले आगामी कार्तिक 17 गते के लिए निर्धारित रूपंदेही निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य उपचुनाव से संबंधित सभी कार्यक्रम रद्द करके मध्यावधि चुनाव के लिए आयोग ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू की थी। आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने बताया कि चुनाव घोषणा के साथ ही सरकार के साथ औपचारिक परामर्श और अन्य प्रशासनिक तैयारियों तथा योजना का मसौदा तैयार करना शुरू हो गया है। भाद्र 23 और 24 गते को हुए जेएनजी आंदोलन और इससे उत्पन्न हालात के कारण प्रतिनिधि सभा के विघटन के बाद आगामी फाल्गुन 21 गते के लिए चुनाव की घोषणा की गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# हेस डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको
संचार। अब बाकी समाचार। भाद्र 23 और 24 गते हुए जनजी प्रदर्शन के दौरान कुछ आपराधिक तत्वों के घुसपैठ की वजह से हुई आगजनी के कारण सुप्रीम कोर्ट लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आगजनी में मुकदमों से संबंधित करीब 90% कागजात जल गए हैं। हजारों मुकदमों के मिसील जल चुकने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के सिवा अन्य मुकदमों को देखने की असमर्थता जाहिर करते हुए सूचना जारी की है। बता दें कि फिलहाल तंबू गाड़कर कोर्ट के काम किए जा रहे हैं। नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने भेंट कर बधाई और कार्यकाल सफलता की शुभकामना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज सुबह हुई भेंट के दौरान दोनों के बीच देश के वर्तमान घटनाक्रम और समसामयिक राजनीतिक स्थिति के विषय पर चर्चा हुई। ये जानकारी अध्यक्ष दाहाल के सचिवालय ने दी। भेंट में प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि देश को शांति और स्थिरता की ओर ले जाने में राष्ट्रीय सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय संकट को हल करने के लिए सभी के सहयोग से आगे बढ़ने का आग्रह किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदाधिकारियों और प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल के बीच जेएनजी आंदोलन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों, शांति व्यवस्था और मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा हुई है। आयोग के कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर में उनके बीच बदलती परिस्थितियों में देश की शांति सुरक्षा और नेपाली सेना के संरक्षण में रखे गए लोगों की स्थिति पर आज चर्चा हुई। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ ने सड़क की स्थिति देखकर ही दशहरे के लिए अग्रिम बुकिंग खोले जाने की जानकारी दी है। यातायात व्यवस्था विभाग में आज हुई चर्चा के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर सड़क पूरी तरह से संचालित न होने के कारण बाहर से सार्वजनिक यातायात उपत्यका आने जाने में समस्या होने से अग्रिम टिकट बुकिंग खोलने में दिक्कत हो रही है। ये जानकारी महासंघ के अध्यक्ष विजय बहादुर स्वार ने दी। यातायात व्यवस्था विभाग के महानिदेशक राजीव पोखरेल ने वर्तमान स्थिति और त्योहारों के समय में काठमांडू घाटी से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए सहज और सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाने का माहौल तैयार करने में सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय आवश्यक बताया। बारा की सुवर्ण गांवपालिका वार्ड नंबर 3 पतगछिया में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में स्थानीय 45 वर्षीय गोपाल यादव, 30 वर्षीय रविशंकर यादव और 40 वर्षीय अजमुल मियां शामिल है। पुलिस के अनुसार भाद्र 29 गते ही एक ही जगह इन सभी ने मदिरा सेवन किया था। बता दें कि बीती रात इलाज के दौरान कुछ घंटे के अंतराल में उन सभी की मौत हुई है। पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर तनहु से धनुषा जा रही नेपाली सेना का एक ट्रक चूरियामा स्थित एक पुल से करीब 12 फीट नीचे नदी में गिर गया। इस दुर्घटना में 16 सैनिक घायल हो गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक नंबर 2 राजदल गण की थी और इसका नेतृत्व उपसेनानी हर्ष विक्रम अधिकारी कर रहे थे। जोखिम के कारण मॉनसून के दौरान रात में बंद रहने वाली बीपी राजमार्ग को अब 24 घंटे खोलने का निर्णय किया गया है। काबरे के जिला प्रशासन कार्यालय में हुई सुरक्षा समिति की बैठक ने ये फैसला किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में इजरायली सेना द्वारा चलाए गए बड़े पैमाने के जमीनी हमले के दौरान कम से कम 68 लोगों की मौत की खबर है। ये हमला हमास के 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में इजरायल की चल रहे व्यापक सैन्य कार्रवाई का एक हिस्सा है। इजरायली सेना गजा के अंदरूनी इलाकों में अपनी जमीनी कार्रवाई तेज कर रही है। टैंकों और पैदल सैनिकों ने शहर के कई इलाकों में घुसपैठ की है, जिसमें भीषण मुठभेड़ों की सूचना भी है। जमीनी हमले के साथ साथ इजरायली वायुसेना लगातार गाजा पर भारी बमबारी कर रही है। इस बमबारी का लक्ष्य हमास के कमांडर, उनके ठिकाने और उनके भूमिगत सुरंग नेटवर्क बताए जा रहे हैं। हमले के दौरान गजा की संचार सेवाएं, इंटरनेट और फोन, बिजली आपूर्ति लगभग पूरी तरह से कट गई थी, जिससे बाहरी दुनिया के साथ संपर्क टूट गया और मदद के लिए पुकार लगाना मुश्किल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गजा में बिगड़ते मानवीय संकट पर गहरी चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संघर्ष विराम पर सहमत होने और राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ने का आग्रह किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जैनजी आंदोलन के शहीदों का पशुपति आर्यघाट में राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कल मनाया जाएगा राष्ट्रीय शोक। सड़क की स्थिति देखकर ही दशहरे के लिए अग्रिम टिकट बुकिंग खोलने की यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ की मांग। भरोसेमंद सुरक्षा व्यवस्था करने की प्रहरी की प्रतिबद्धता। जहरीली शराब पीने से 12 के पतगछिया में 3 लोगों की हुई मौत और गजा क्षेत्र में इसराइल की जमीनी कार्रवाई में कम से कम 68 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।